ஓம் த்யாயே நித்யம் மகேசம் ரஜத் கிரி நிபம் சாரு சந்திராபதன்சம் ரத்னா கல்பஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகவர வேதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதமமரகணிர் வ்யாக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்த்யம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத் புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதஞ்ச ஹஸ்தமலகஞ்ச சிஷ்யம் தந்த்ரோடகம் வார்த்திகாரமன்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சச்சுசே ஸ்ரேய ப்ராப்தி நிமித்தாய நம சோமார்த்ததாரிணே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம் நமோ பவாய மிருடாய நம ஓம் மிருடாய நம ஓம் மிருடாய நம ஓம் நமோ மிருடாய மிருடாய நம ஓம் मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम नमो मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का प्रसंग चल रहा है तत्व विवेक नामक प्रकरण पहला प्रकरण का अभ्यास के लिए दूसरा श्लोक तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते शब्दस्पर्शादयो विद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक् ततो विभक्ता तत्संविद् ऐकरूप्यान्न विद्यते तथा स्वप्ने अत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो अतस्तयो संवित् एकरूपा न विद्यते तोत्थितस्यासौ सुप्ता तमोबोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदात्मनः सा बोधो विषयाद् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित्तद्वद्दिनान्तरे मा शाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वने कदा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रवाह। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं वेदांत में। अनुबंध चतुष्टय शास्त्र के बारे में विचार करने के लिए होता है। ये शास्त्र किसके लिए है, शास्त्र जिसके लिए रचना की गई है वह व्यक्ति शास्त्र का अधिकारी होगा। सभी के लिए शास्त्र की रचना वो नहीं हुई है। जो अधिकारी होता है उसी के लिए हर चीज सभी के लिए नहीं बनाया गया है। हलवा सभी के लिए नहीं बनाया गया, शुगर वालों के लिए बनाया गया है नहीं। जिसको शुगर नहीं है उसके लिए बनाया गया है। पकौड़े सभी के लिए नहीं बनाया गया, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बनाया गया है नहीं है। इसी तरह शास्त्र भी सभी के लिए रचना, शास्त्र की रचना सभी के लिए नहीं हुई है। फिर किसके लिए हुई है, जो उसका अधिकारी है उसके लिए, जिसको वो चाहिए उसके लिए। मुमुक्षु होगा उसके लिए वेदांत शास्त्र है। जो बुभुक्षु होगा उसके लिए तो वेदांत शास्त्र की रचना नहीं की है, तो इसीलिए अधिकारी पहला है। अधिकारी इसलिए शास्त्र की भिन्न भिन्नता हो गई है। विद्वानों ने वेदांत की रचना भी कर दी है, तो विद्वानों ने कामशास्त्र की रचना भी कर दी है। अब जब वेदांत शास्त्र की रचना करनी थी तो कामशास्त्र की रचना क्यों कर दी, क्या जरूरत था? जिसको वो चाहिए उसी के लिए है वो। इसलिए महाराजा भर्तृहरि ने चार शतकों की रचना की। श्रृंगार शतक की रचना कर दी है। जब वह जवान थे, जब युवा थे भरी जवानी में, उनको वही अच्छा लगा, वही ठीक लगा, उसी के लिए वो पागल होते थे, तो उन्होंने उसी की रचना कर दी, तो श्रृंगार शतक की रचना कर दी। बाद में जब वो राजा बन गए तो राज्य चलाना था, और श्रृंगार शतक को पढ़कर राज्य तो चलाया नहीं जा सकता है भाई। भोग विलास में लगकर राज्य तो नहीं चलाया जा सकता। तो राज्य चलाने के लिए जो आवश्यकता थी तो उनके लिए नीति शतक की रचना कर दी। जब उनको वैराग्य आया अपनी पत्नी के व्यवहार से, उनको जब वैराग्य आ गया तब उन्होंने वैराग्य शतक लिख दिया। वैराग्य क्या है, कैसे होनी चाहिए वैराग्य। जब वैराग्य से परिपूर्ण हुए, भोग विलास छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, वैराग्य का आश्रय लेकर जब साधना में लगे तो उन्हें जो अनुभूति हुई उसको उन्होंने ब्रह्म शतक के रूप में लिख दिया। ये भर्तृहरि के चार शतक है। सौ सौ श्लोकों की रचना भर्तृहरि ने की। तो श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक और ब्रह्म शतक। ब्रह्म शतक अभी उपलब्ध नहीं है, उल्लेख है उनकी रचनाओं का कि उन्होंने लिखी है, लेकिन अभी कहीं खोजते हैं कहीं उपलब्ध नहीं होता। लेकिन तीन शतक उपलब्ध है। श्रृंगार शतक में उन्होंने क्या लिखी है, पढ़ने की इच्छा हो तो खरीद के पढ़ लेना भाई, बिगड़ नहीं जाना। नीति शतक में क्या लिखी है, पढ़ने की इच्छा हो तो खरीद के पढ़ लो, बाजार में मिलती है सर्वत्र। वैराग्य शतक में क्या लिखी है, तो मुझे तो लगता है कि तुम लोगों के लिए अब वैराग्य शतक ही उपयोगी है। अब भी तुम श्रृंगार शतक को पढ़ने के लिए लग जाओगे तो फिर तुम गए काम से, लेकिन जिसके लिए जरूरत है वो पढ़े, वो कहते हैं अधिकारी। पहला है अनुबंध अधिकारी। अधिकारी के चार लक्षण बता दिए हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यामुत्रार्थ फलभोग विराग, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता। ये चार चीज अधिकारी में होनी चाहिए। ये पंचदशी ग्रंथ का अधिकारी कौन है, बोलो? झवेरी बाजार का व्यापारी है कि क्रॉफर्ड मार्केट का व्यापारी है, हैं? बोलो, आप लोगों को समस्या पड़ गई है शायद। यहां झवेरी बाजार के व्यापारी भी होंगे, क्रॉफर्ड मार्केट के व्यापारी भी होंगे या आप लोगों में से, फिर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, इसके अधिकारी कौन है इस पंचदशी के? उससे नहीं काम चलेगा यार। नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, सड़ संपत्ति, मुमुक्षुता, ये चीज जिसके पास होंगे, इन चार साधनों से जो संपन्न होगा वो व्यक्ति के लिए ये पंचदशी की रचना हुई है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचदशी अब शुरू हुई है पहले तारीख से। आप ये नहीं सोच लेना कि पंचदशी के लिए हम अधिकारी नहीं हैं, स्वामी जी ने कह दिया है इसलिए एक महीना छुट्टी मना लेते हैं है? तब तो फिर तुम लोगों का ये पंचदशी जब तक यहां खत्म नहीं होगा तब तक जून महीना प्रेमपुरी आश्रम आना बंद हो जाएगा। या क्योंकि ये कंडीशन यदि रखा जाए फिर तुम लोगों में से कोई भी नहीं आओगे तो पंचदशी आगे नहीं चलेगी, क्योंकि थर्मामीटर लगाया जाए तो पंचदशी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो तुम्हारे में मिलेगा नहीं है वो है। फिर भी सुन लो भाई, तो वो हो गया अधिकारी। विषय क्या है? दूसरा हो गया अनुबंध विषय। जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन करना ये ग्रंथ का विषय है। विषय माने आप लोग कहते हो ना सब्जेक्ट। हाँ, एकता, भिन्नता भेदता सिद्ध करना इस ग्रंथ का विषय नहीं है। ग्रंथ जिस विषय में चर्चा करने वाला है, इस ग्रंथ के माध्यम से जो विषय वस्तु के बारे में विचार किया जाएगा वह घुमा फिराकर हर हालत में जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही प्रतिपादन किया जाएगा, तो वही इसका विषय है। प्रयोजन क्या है? तीसरा है प्रयोजन अनुबंध, तीसरा अनुबंध प्रयोजन। तीसरा विषय है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? दुखत्रय के आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये इसका प्रयोजन है। इस प्रयोजन से इस ग्रंथ की रचना हुई है। संबंध है चौथा अनुबंध। संबंध क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। प्रतिपादकता ग्रंथ में है, प्रतिपाद्यता ब्रह्म में है। ब्रह्म प्रतिपाद्य है, परमात्मा प्रतिपाद्य है, जीवात्मा का पारमार्थिक स्वरूप प्रतिपाद्य है और उसको प्रतिपादन करने वाला ये खुद शास्त्र है। तो इस शास्त्र के साथ ब्रह्म का क्या संबंध है? इस शास्त्र के साथ आत्मा का क्या संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। इस प्रकार से ये चार अनुबंध इस ग्रंथ का है। तो अनुबंध चतुष्टय, उसके अंतर्गत ये दूसरे नंबर का जो श्लोक है विशेष करके अधिकारी के बारे में संकेत कर दिया। तत्पादां बुरुहद्वंद्व सेवा निर्मल चेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते मया मया विधीयते। ये पंचदशी नामक जो ग्रंथ है इसमें जो तत्व विवेक नाम का पहला प्रकरण है, इस प्रकरण की मेरे द्वारा रचना की जा रही है। विधि यते का अर्थ होता है किया गया है। अभी तो ग्रंथ रचना हुई नहीं तो ऐसा क्यों कहा? अयम तत्व विवेक विधीयते, यह तत्व विवेक नामक प्रकरण की रचना की जा रही है। की जा रही है और कह रहे हैं कि यह शब्द, अयम शब्द जो आगे है, प्रत्यक्ष है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द परोक्ष के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। वस्तु सामने न हो तो उसको यह नहीं कहा जाएगा। इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होगा उसी वस्तु को यह, इदम, अयम है ना, यह शब्द प्रयोग होगा। और प्रत्यक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? वह, तत्, वह शब्द प्रयोग होगा। तो यहां अयम शब्द प्रयोग कर दिया। ग्रंथ की रचना ग्रंथ आगे है नहीं है, कह दिया अयम ग्रंथ। तो इसका अभिप्राय यह है, विद्वान ग्रंथ की जो रचना करने जा रहा है वह ग्रंथ को बुद्धि से प्रत्यक्ष देख रहा है। इसलिए विद्वान के दृष्टि में तो ग्रंथ अयम है, जो लेखक है उसके दृष्टि में तो ग्रंथ क्या है? प्रत्यक्ष है। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाने से पहले जिस चित्र को बनाना चाह रहा है, अभी बनाया नहीं है, जिसको बनाना चाह रहा है वो चित्र उसके लिए प्रत्यक्ष है। कौन सा चित्र? जो अभी बना नहीं है, बनाने जा रहा है, बना नहीं है, लेकिन वो जो चित्र जो बनाने जा रहा है वो चित्र, वो चित्रकार के लिए क्या है? प्रत्यक्ष है। ये वो आंखों से नहीं देख रहा है भले, उसके मन में तो वो प्रत्यक्ष है ना, मन से देख रहा है, बुद्धि से देख रहा है। इसलिए चित्रकार तो ये कह सकता है बनने से पहले अयम चित्र है, लेकिन तुम और हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये अयम, बनने के बाद जब आंख से देखेंगे तभी कहेंगे कि अयम, तभी हम ये कहेंगे कि यह। जैसे आप उस आंख देखकर आप ये कह पाओगे कि नहीं कि यह आमरस है, जिसको आमरस बनाना है, आमरस बनाने के लिए जो आम रखी है जिसने, उसके लिए आमरस बनने से पहले वो आमरस प्रत्यक्ष है, आप और हमारे लिए नहीं। जो आमरस बनाना चाह रहा है, आमरस बनाने के लिए जो आम की संग्रह कर रहा है, उसके लिए तो मैं आमरस बनाने वाला हूं, तो वो बनने वाला आमरस जो है वो उसके बुद्धि में प्रत्यक्ष है। तो वो ये कह सकता है कि यह आमरस, यह आमरस बनाने की तैयारी करने वाले से पूछो ये क्या कर रहे हो? आमरस बना रहा हूं, बना रही हूं। किसके लिए? यह आमरस आज मेरी बेटी आने वाली है उसके लिए। वो कहेगी कि नहीं बोलो? जो आमरस बनाने के लिए तैयार कर रही है वो ये कहेगी यह आमरस मेरी बेटी आने वाली है उसके लिए है, या मेरे हमारे गुरु आने वाले हैं उनके लिए, बना ही नहीं फिर भी यह, इसका मतलब उसके बुद्धि में वो आमरस तैयार है, बस प्रत्यक्ष है। इसी तरह विद्वान के लिए ग्रंथ क्या है, जिस ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं उस कवि के लिए, उस विद्वान के लिए वह ग्रंथ प्रत्यक्ष है, इसलिए अयम। किसके लिए, तो ये बताया अधिकारी। अब यहां विद्यारण्य मुनि जी ने वो जो वेदांत का जो अधिकारी है उसकी जगह यहां दूसरा ही अधिकारी रख दिया है। अब वो विद्यारण्य मुनि जी ने जिस अधिकारी की बात यहां कही है वो आप में घटता है कि नहीं, आप स्वयं विचार कर लेना भाई। पहले श्लोक के द्वारा नमस्त्री शंकरानंद गुरु पादाम्बु जन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासहिक कर्मणे। तो शिष्य को यह पूरा विश्वास है कि गुरु के जो चरण है उसको मैं नमस्कार कर रहा हूं, किस प्रयोजन से, सविलास तुला विद्या के सहित महामोह माने मूला विद्या, तुला विद्या अपने स्वरूप को ढकने वाली है, उसको तुला अविद्या बोलते हैं, तुला विद्या नहीं है, ध्यान देना, मूला विद्या, मूला विद्या मूल प्लस अविद्या इक्वल टू मूला विद्या, मूल अविद्या, सबका जो मूल है वो क्या है, तो बोले अविद्या। सविलास शब्द से तुला विद्या, कारण अविद्या और कार्य अविद्या, इस प्रकार से अविद्या का दो वर्ग हो गया, एक कार्य अविद्या दूसरा कारण अविद्या। आप लोग मनुष्य हो कि नहीं, यहां हो, और आप ये यदि अपने को मानते हो कि मैं मनुष्य हूं, ये तुला विद्या है, समझे कि नहीं। तुला विद्या का लक्षण क्या है, तुला विद्या का लक्षण क्या है, आप ये मानते हो कि नहीं कि मैं मनुष्य हूं, पशु तो नहीं हो, पक्की बात है, पशु तो नहीं हो, भर्तृहरि ने तो कहीं ना कहीं कह दिया है भाई, साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना है। कुछ पशु प्रेमपुरी आश्रम के कुर्सियों में बैठते हैं, आपको बुरा लगा है? कुछ पशु सड़क में चलते हैं, कुछ पशु ट्रेन में चलते हैं, कुछ पशु पार्क में घूमते हैं, कुछ जंगल में घूमते हैं, कहीं खेत में घूमते हैं, और कुछ पशु प्रेमपुरी आश्रम की कुर्सियों में बैठते हैं। तो अब चार पांच आदमी बच गए भाई, अब कुर्सी में नहीं बैठे हो ना। हाँ, सिंह और पूछ नहीं जिसके ए पशु, पशु शब्द का अर्थ होता है जो बंधन में है। पशु शब्द का अर्थ क्या है, जो बंधन में है, बंधा हुआ है। अब आप ईमानदारी से बताओ कि आप बंधे हुए हो कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आप बंधे हुए हो कि नहीं बोलो, पत्नी से बंधे हो, दुकान से बंधे हो, बेटों से बंधे हो, परिवार से बंधे हो, व्यापार से बंधे हो, व्यवहार से बंधे हो, आखिर बंधन है कि नहीं? लोक मर्यादा से बंधे हो, हजार चीज से बंधे हो, एक बंधन है आपकी, हजार बंधन है। आपको अभी कह दिया जाए कि खड़े होकर यहां कपड़े सब निकाल लो, बिल्कुल दिगंबर हो जाओ, तो नहीं कर सकते आप, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाते हो? मर्यादा से बंधे हो। और जो मर्यादा से बंधा नहीं है वो निकाल पाएगा कि नहीं बोलो? जिसको कोई मर्यादा नहीं है, लाज शर्म नहीं है, मर्यादा क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, वो तो निकाल देगा। लेकिन आप नहीं निकाल पाओगे तो आप मर्यादा से बंधे हो। तो पास बद्धो ही पशवः, पशु का लक्षण क्या किया है? जो बंधा हुआ हो उसको पशु कहते हैं। तो आप और हम बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? आत्मानंद खुद पशु है कि नहीं बोलो? आत्मानंद खुद पशु है कि नहीं? क्या बात करते हैं? बंधा नहीं होता तो एक महीना यहां क्यों रहता है? बंधा नहीं होता तो मैं जून महीना क्यों आता? मैं बंधा हुआ मर्यादा से, मुझे एक महीना यहां रहना है, एक महीना मुझे कथा करनी है, इस बंधन से मैं बंधा हुआ हूं। मैं मई में क्यों नहीं आया, जून में क्यों आया, जुलाई में क्यों नहीं आता हूं? बंधा हुआ हूं। इसीलिए क्या बोलते हैं व्यवहार में, वचनबद्धता, ये शब्द प्रयोग करते हो कि नहीं? क्या हुआ स्वामी जी, आप वचनबद्ध, आपने वचन दिया है, वचन से बंधे हुए हो कि जून महीना पहले तारीख से 30 तारीख तक स्वाध्याय प्रवचन मैं करूंगा, ऐसा आपने कहा है, इसलिए आप वचन से बंधे हो। तो आत्मानंद पशु है कि नहीं है? बोलो, क्यों संकोच कर रहे हो? बंधा हुआ है, है? यदि न बंधा होता तो स्वच्छंद होता, घूमता फिरता, तुम्हारी मर्यादा में क्यों बैठता? और ये नियम है, वो पशु सभी को पशु देखता है, आत्मानंद खुद पशु है, इसलिए प्रेमपुरी के कुर्सी में रहने वाले सभी को पशु कह रहा है, पशु देख रहा है। मृगा मृगई संगम अनु ब्रजंती गावच्च गोभी तुरगा तुरंगई, गाय अपने गाय जाति को पहचानती है, पहचानती है कि नहीं है? मृग अपने मृग जाति को पहचानते हैं, भैंस अपने भैंस जाति को पहचानते हैं, घोड़े अपने घोड़े जाति को पहचानते हैं। तो आत्मानंद पशु है, इसीलिए अपने जाति को क्या करता है? पहचानता है। खुद बंधन में पड़ा हुआ है, इसलिए वो तुम लोगों को भी बंधन में देख रहा है, देख ही रहा है बंधन। तो हर्जा क्या है? पासवद्धो ही पशवः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, सिंह और पूंछ नहीं है ऐसा पशु कुर्सी में बैठे हैं, मंच में भी बैठा है बड़ा पशु, कुछ जमीन में बैठे हैं, पास बद्ध हो। हम लोग तो बंधन में है ना, अब इतने अलग है कि उस बंधन से हम कैसे मुक्त हों। बंधन है ये बात तो हम स्वीकार कर रहे हैं, और वो बंधन ही हमारा दुख का कारण है, इसलिए उससे मुक्त होना हम चाहते हैं। तो यह दूसरे नंबर का श्लोक, तत्पादाम्बुरुहद द्वंद, क्योंकि सविलास महामोह ग्राहक ग्रासई का कर्मणे, पहले नंबर के श्लोक में कहा। विलास शब्द का अर्थ होता है कार्य, समझ गए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं महिला हूं, ये अज्ञान का कार्य है। आप ये कह रहे हो कि मैं पुरुष हूं, ये भी अज्ञान का कार्य है। यही तुला विद्या है। मैं मनुष्य हूं, ये तुला विद्या है। मैं महिला हूं, ये तुला विद्या है। मैं पुरुष हूं, ये तुला विद्या है। मैं श्रोता हूं, ये तुला विद्या है। मैं वक्ता हूं, ये तुला विद्या है। ये सब अविद्या है। इसी को सविलास कहा यहां। और मूल अविद्या क्या है? तुम और हम में से किसी ने भी अभी तक मैं ब्रह्म हूं अनुभव नहीं किया है। किया है? मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव किया है? मैं ब्रह्म हूं ये बात तो सुनी है। मैं ब्रह्म हूं ये बात सुनकर तुमने मानी है। तुम कौन हो? तुम या तो ये कहोगे कि मैं मनुष्य हूं, और या कुछ दिन वेदांत सुना हुआ हो तो उसके नाते उसके संबंध से कहोगे मैं तो ब्रह्म हूं। ये दो के अलावा और क्या कहोगे भाई? तुम कौन हो? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। या तो कार्य अविद्या को तुम प्रदर्शन करोगे, या फिर तुम ये कहोगे कि वेदांत सुनी सुनी, जब तक सुनते हो अभी तक जो सुना है उस नाते से तुम ये कहोगे कि मैं तो ब्रह्म हूं महाराज। लेकिन तुमसे जब ये पूछा जाए तुम ब्रह्म हो, क्या अपनी ब्रह्मपना का तुमको अपरोक्ष हुआ है? बोलो। जैसे मैं मनुष्य हूं इसका तो अपरोक्ष है कि नहीं? बोलो। मैं स्त्री हूं इसका तो एस्पिरेंस है कि नहीं? है अपरोक्ष है कि नहीं? एस्पिरेंस है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं? मैं पुरुष हूं इसका तो अनुभव है कि नहीं? इसी तरह जैसे मैं स्त्री हूं ये आपको अनुभव है, मैं पुरुष हूं ये आपको अनुभव है, मैं मनुष्य हूं ये आपको अनुभव है, इसी तरह कह तो दिया मैं ब्रह्म हूं, और क्या तुमको मैं ब्रह्म हूं इसका अनुभव हुआ? हैं? क्यों नहीं हुआ? उसको कहते अनुभव होना न देने वाले जो अविद्या है उस तत्व को नाम महामोह, उसी को वेदांत ने मूलाविद्या कही है। वेदांत दर्शन में उसको मूल अविद्या, मूलाविद्या पंचदशिकार विद्यारण्य मुनि जी ने उसको यहां महामोह कहा। मोह माने अटैचमेंट, वो तुला विद्या। महामोह माने उसका भी कारण, उसका भी भाव महामोह। महामोह क्या? इसलिए उसको महाविशेषण लगा दिया। मोह तो मोह है, महा क्यों कहा? क्योंकि सबका कारण है। सबका कारण का मतलब ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत विश्व का जो कुछ है वो सबका कारण है। उसी से ये सब उत्पन्न हुआ है। और जब आपको मैं ब्रह्म हूं ये अपरोक्ष होगा, मैं ब्रह्म हूं ये भाव अपरोक्ष होगा, अपरोक्ष होगा मतलब अनुभव में आएगा, अपनी ब्रह्मपना का आपको जब अनुभव आएगा तब वह महामोह नष्ट होगा। अनुभव में आते ही महामोह नष्ट होगा, पहले अनुभव होगा बाद में महामोह नष्ट होगा कि पहले महामोह नष्ट होगा तब अनुभव होगा, एक साथ होगा। ये नहीं समझ लेना कि पहले अनुभव होगा तब जाकर महामोह नष्ट होगा, ऐसा नहीं समझ लेना, या पहले महामोह नष्ट होगा तब अनुभव होगा, ऐसा भी नहीं समझ लेना। दोनों एक साथ इमीडिएटली है, एक ही क्षण में दो काम होगा। जैसे पहले अंधकार हटेगा तब दीपक जलेगा कि पहले दीपक जलेगा तब अंधकार हटेगा, दोनों एक साथ होगा। दीपक जला के अंधकार गए, इसी तरह ये क्षमता किसमें है, महामोह को नष्ट करने की क्षमता किसमें है, गुरु में है। तत्वज्ञान प्रदान करके, तत्त्वमसि आदि वाक्य द्वारा तत्वज्ञान प्रदान करके, अपरोक्ष अनुभव कराकर उस महामोह जो रागद्वेष आदि को उत्पन्न करने में कारण है, जन्म मृत्यु आदि भाव को उत्पन्न करने में कारण है, सुख दुख रागद्वेष आदि संसार अनर्थ को उत्पन्न करने में जो कारण है, उस महामोह रूपी ग्रह मगरमच्छ को भी ग्रसन करने की क्षमता जिसमें है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं नमस्कार करता हूं। ये पहले श्लोक का अभिप्राय है। लेकिन ये नमस्कार करके करने मात्र से काम नहीं बनने वाला है, ये दूसरे श्लोक से कह रहे हैं। तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व, द्वंद्व माने दो चरण है, इसका मतलब हो गया कि कोई भी पशु गुरु नहीं हो सकता है, चार पांव वाला पशु गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि पशु का तो चार पांव होंगे है, यहां गुरु का द्वंद्व। पादाम्बुरुह, पाद कीदृश पाद, अम्बुरुह जल से उत्पन्न हुआ हुआ चरण, जल से उत्पन्न हुआ हुआ चरण का मतलब चरण कमल, जल से उत्पन्न हुआ कमल है इसलिए चरण कमल, पादा अम्बुरुह चरण कमल। तत् माने गुरु, जो सविलास महामोह ग्राह ग्रासिक कर्मणे वो काम करने में समर्थ सक्षम है ऐसा जो गुरु, उनके चरण कमल, दो चरण कमलों की है, दोनों चरण कमलों की, एक की नहीं है, दोनों की सेवा करनी होगी, सेवा है। अब आपने पहले श्लोक के अनुसार गुरु के चरण कमल को नमस्कार तो किया होगा है ना, तो इतनी से आपका महामोह ग्रह नष्ट हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। तो नमस्कार करने मात्र से नष्ट नहीं होने वाला है, फिर क्या करना है, सेवा। अब आपने आप को समझ लो ध्यान लगाकर है कि आपने सेवा की कि नहीं चरण की है, अब आपने आप ही विचार कर लो कि हमने सेवा की कि नहीं, गुरु के चरणों की सेवा की कि नहीं, अपने अपने ध्यान लगा कि मैंने किया कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं महात्मा के चरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, बोले क्यों नहीं छूना चाहिए? बोले पता नहीं हम कहां कहां से आते हैं, क्या क्या करते हैं। एक ने तो कहा कोई बीड़ी पीते हैं, कोई खैनी खाते हैं, ये हाथ कैसा है कैसा है, ऐसे हाथ गुरु के पवित्र चरण में क्यों लगाना, इसलिए चरण नहीं छूनी चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं हम तो मैं मूर्ख खल कामी का पापी पामर, हमारे जैसे, और गुरु कहां पवित्र, उनको क्यों स्पर्श करना चाहिए, चरण क्यों छूना है, यदि छुएंगे तो वो सब गुरु में चला जाएगा। हम अपवित्र व्यक्ति पवित्र गुरु को छुएंगे तो हमारी सारी अपवित्रता गुरु में चला जाएगा, है ना? इसलिए गुरु को नहीं छूना चाहिए। क्या क्या कल्पना करते हैं भगवान जाने। किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, गुरु इतना साधन करते हैं, भजन करते हैं, इतना तपस्या करते हैं, और यदि छू लेते हैं वो गुरु के साधन तपस्या भजन पुण्य सब खींच लेते हैं। कौन खींच लेता है? वो एक होता था ना पहले, आजकल भी होता होगा क्या, वो पेपर होता है ना, ब्लॉटिंग पेपर। तो तुम लोग सब ब्लॉटिंग पेपर हो, हैं? तुम लोग ब्लॉटिंग पेपर हो क्या? लिखते लिखते यदि स्याही गिर गई तो ज्यादा फैल गया तो एक पेपर तुरंत उसमें लग दो तो वो फैला हुआ स्याही खींच लेता है। तो तुम लोग सब ब्लॉटिंग पेपर हो? नहीं हो ना? फिर कैसे खींच लेते हो तुम लोग, हैं? गुरु के तपस्या को फिर खींच कैसे लेते हो तुम लोग? पहले के जमाने में एक पेन आता था, आजकल भी आता है कि नहीं? आजकल तो प्राय करके सब फाउंटेन पेन नहीं, सब बंद ही हो चुका है, बॉल पेन ही चालू हो गया। पहले फाउंटेन पेन होता था, या तो खोलकर उसमें स्याही भरनी पड़ती थी, और बाद में कुछ ऐसे कंपनियों ने ऐसा पेन तैयार कर दिया है कि इंक पुट में उसको पेन को रख दो तो वो अपने खींच लेता था, पूरा फुल हो जाता था। तो तुम लोग वैसे पेन हो क्या? गुरु के चरण को छू लिया और सारे पुण्य खींच लिया। तो इन सब कारणों से गुरु के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसी बात करते हैं। तो हमसे पूछा किसी ने, भाई क्या है महाराज? तो हम तो इतने ही कहेंगे भाई, किसी के छूने से उसके गुरुपना चला जाए तो ऐसा गुरु किस काम का है? इतना कमजोर है वो गुरु, है? इतना कमजोर है वो गुरु? और ऐसा गुरु भी कहीं गुरु होता है? हैं? शिष्य मेरे चरण को छुएगा तो मेरा सारा पुण्य ले जाएगा, मैं खाली हो जाऊंगा, ऐसा भी गुरु गुरु होता है? इतना कमजोर होगा वो गुरु? तुम्हारा गुरु इतना कमजोर होगा? फिर ऐसी कल्पना क्यों करते हो भाई? ये बात अलग चीज है कि ठीक है, पता नहीं कौन किस अवस्था में है, संक्रमण आदि की बात तुम कहो तो मैं मान सकता हूं, है ना? क्योंकि ये तो साइंस भी मानता है, संक्रमण आदि की बात तुम कहो तो मैं मान सकता हूं। कौन किस अवस्था में है, कैसे कपड़े हैं, नहा के आया नहीं नहा के आया, बैक्टीरिया है और सीधे ही नजदीक जाता है, हम तो ये कहेंगे ऐसा व्यक्ति कमरे में ही नहीं जाओ गुरु के, है? ऐसा व्यक्ति फिर कमरे में जाते क्यों हो? कमरे में ही नहीं जाओ। तो गुरु की चरण की सेवा तो करनी ही चाहिए। अब रही सेवा कैसे करना है। विद्यारण्य मुनि जी ने स्तुति नमस्कारादि लक्षणया निर्मलम, सेवा के अनेक प्रकार हैं, खुद ही चरण दबाकर सेवा करो। तो ये प्रेमपुरी आश्रम की बात है, यहां एक सज्जन आते थे बहुत पहले, महात्माओं के सेवा करने के लिए आते थे और कुछ न कुछ सेवा करें महाराज बोलते थे, और सब चले जाते थे तो कमरे में जाकर महाराज आप खाट में लेट जाओ, हम थोड़ा सेवा करेंगे आपकी। दो घंटे बैठे आसन लगाकर स्वाध्याय प्रवचन करते हो तो फिर पांव दबाना, कमर दुख रहा हो कमर दबाओ, पांव दुख रहा हो पांव दबाओ। तो हमने एक दिन कहा उसको, ए बेटा आज कथा करते करते गला दुख रहा है, बैठे बैठे पांव दुख रहा था तो कथा करते करते क्या दुख रहा है, तो सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं बोलो। पांव दबाते हो, पांव दुखने पर पांव दबाओगे तो गला दुखने पर गला दबाओगे कि नहीं, फिर क्या सेवा करोगे। बड़ा मुश्किल है भैया। सेवा के कई प्रकार है, स्तुति करना भी सेवा है, नमस्कार करना भी सेवा है। उनको जो व्यवहार में दैनंदिनी व्यवहार में जो आवश्यक वस्तु है उसकी उपलब्धि कराना भी सेवा है, कई प्रकार की सेवा है। उस सेवा से ही सेवा निर्मल चेतसा, तब जाकर चित्त शुद्ध होगा, तब जाकर वो अधिकारी बनेगा। किसका? पंचदशी का। ये समय ज्यादा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।